अब आप देखिए कि हम देख चुके इस आयत को अमूमी तौर पर, लेकिन इसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि इस आयत को बुनियाद बनाते हुए खुलासा कर दूँ कि औरत और मर्द के ताल्लुकात की क्या हदूद हैं, और अगर बिगाड़ हो जाए, खराबी हो जाए, तो उस सूरत में उसमें इसलाह की क्या सूरत हाल होनी चाहिए। पहली बात देखिए कि कुरान पाक में ऐसा लगता है कि सूरत बकरा से लेकर सूरत निसा की इन आयात तक बार बार औरतों के हकूक़ की बात हुई, और जो लोग कुरान पाक से करीब का ताल्लुक़ रखते हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करेंगे कि कुरान पाक में जितनी औरतों के हकूक़ पे बात हुई उतनी मर्दों पे नहीं बात हुई। सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने आयत 228 में फरमाया था कि वलहुन मिसलुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ, कि इन औरतों के लिए भी वही हकूक हैं जो मर्दों के हैं। फिर एक जगह हमने पढ़ा वाशिरूहुन्न बिलमारूफ, इनको अच्छे तरीके से रखो। अब ये बातें करने के बाद सूरत बकरा के आगाज़ में औरतों के हकूक, उसको विरासत में हिस्सा दिलाने की बात के बाद, अब यहाँ पहली दफ़ा ये बात आ रही है कि अर्रिजालु कवामून अलन्निसा। और अगर देखा जाए तो ये लफ्ज़ कोई मर्द को बहुत कुछ दे नहीं रहा, बल्कि मर्द से कुछ तकाजे कर रहा है। तीन लफ्ज़ जो कवाम के आपके सामने रखे थे, अगर इसकी बुनियाद पे ये कह दूँ कि मर्द अपने घर के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने के मुकल्लफ़ हैं, यानी ये उनकी ज़िम्मेदारी है, घर, बीवी, बच्चे, उनकी हिफाजत की निगेबानी मर्दों के ज़िम्मे है, और इसी तरह बीवी और बच्चों की इस्लाह और उनके मामलात, उनके दीन, उनकी तालीम की ज़िम्मेदारी भी मर्दों पे है। अगर वो बाकी दोनों काम करें, खूब कमा कमा के दे रहे हैं, घर भी बड़ा हो रहा है, बीवी को डायमंड्स भी पहनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई मर्द अपनी बीवी और अपने बच्चों की इस्लाह की फ़िक्र नहीं करता, और अमूमन होता क्या है कि जब मर्द बहुत ज़्यादा कमाने की तरफ लग जाते हैं तो वो यही सोच लेते हैं कि बस हमारी ज़िम्मेदारी तो ये है कि हमने घर वालों की माली ज़रूरियात पूरी करनी है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो मर्द को चाहिए कि वो अपने बीवी बच्चों की भी तालीम व तरबियत का ख्याल रखे, कमाने में उतना वक्त लगाए कि कुछ वक्त उसको बच्चों के लिए भी निकालने के लिए मौका मिल सके, उनकी तालीम, उनकी तदरीस का इंतज़ाम कर सके। बीवी के साथ भी शौहर का इंतज़ाम होना चाहिए। खुद अल्लाह के नबी ने इसकी सुन्नत जारी की कि आप अपनी बीवियों यानी अज़वाजे मुतहरात को तालीम भी दिया करते थे, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बाद में उम्मत की खिदमत करती रहीं, तो वो अल्लाह के नबी की तालीमात का ही नतीजा थी। कोई बीवी को कुरान नहीं पढ़ना आता तो शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो उसकी कोशिश करे। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि अगर शौहर को ना आता हो और बीवियाँ पढ़ चुकी हैं तो कोई बात नहीं, बीवियाँ भी उनके लिए करेंगी। औरतें अगर जाहिल रह जाती हैं तो मर्दों से पूछा जाएगा, ज़्यादा सख्ती से पूछा जाएगा, क्योंकि मर्द ज़्यादा ज़बरदस्ती करके भी ये काम करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई औरत बाकी सारे मामलों में तो खूब शौहर से बात मनवा ले, लेकिन इसमें ना मनवा सके, तो ये फिर उसकी अपनी कमज़ोरी है। तो बहरहाल इसके अंदर अल्लाह ताला ने मर्द को ज़िम्मेदारियों का एहसास दिला दिया, फिर औरत को भी सालेहा, कानेता और हाफिज़ा करके उन ज़िम्मेदारियों का एहसास दिला दिया कि ज़िंदगी के सफ़र में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए तोड़ने की बजाय, औरत के मिजाज में इस्लाह की कोशिश होनी चाहिए। अब कुछ लोगों ने एक नाम वैसे से सुन के उसको मारूफ कर दिया, और वो क्या है, इक्वेलिटी का, मर्द और औरत की बराबरी। ये ऐसा इशू है कि जो पहले तो कभी उठा नहीं था, लेकिन आज जब से औरतों को थोड़ी सी इस चीज़ की अवेयरनेस हो गई कि हमारे भी कुछ हकूक़ हैं, और आज के दौर में शोर ही ये है कि किसको क्या हकूक़ मिल रहे हैं, किस तरीके से मामला होता है, और जिनको हकूक़ लेने होते हैं वो हाथों में बैनर्स पकड़ के बाहर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने हकूक़ देने हैं उनको नहीं बताया जाता, जिसके नतीजे में माशरे में आप देखते हैं कि एक डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, और लोग जो हैं वो सब कुछ पास होने के बावजूद भी गैर मुतमईन लगते हैं। इसके बरक्स अल्लाह के नबी के दौर में जो हालत थी उसके बारे में एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा कि हमारी बीवियों का हम पर क्या हक है, तो आपने फरमाया कि जब तुम खाओ तो इनको भी खिलाओ, और तुम पहनो तो इनको भी पहनाओ, और चेहरे पर मत मारो, और अगर इनसे लहतगी करना चाहो तो सिर्फ इतनी करो कि बिस्तर अलग कर दो, यानी घर या मकान से अलग ना करो। इससे क्या पता चलता है कि उस दौर में सहाबा को ये फिक्र होती थी कि हम ये काम करें। आप औरत और मर्द को बराबर कर ही नहीं सकते, ये एक ऐसी कोशिश होगी जैसी कोई शख्स अपने हाथ की पांच उंगलियों को बराबर करने के शौक में सारी उंगलियों को काट के ये छिंगली जो उंगली होती है इसके बराबर कर दे। अपने हाथ को देखिए कि अगर हम पांचों उंगलियों को बराबर करें तो फिर तो ये अंगूठे के बराबर सबको करना पड़ेगा ना। अल्लाह ना करे कोई हादसे का दो चार हो और सारी उंगलियां कट जाएं, तो सिर्फ पीछे से अंगूठे से बराबर करके सारी उंगलियों को कर दे, क्या काम चलेगा? अल्लाह ने जिस तरह पांच उंगलियों को मुख्तलिफ साइज़ दिए क्योंकि अल्लाह को पता था कि ये चीज़ इंसान के लिए फ़ायदेमंद होगी, इसी तरह मर्द मर्द है, औरत औरत है। जब हम ये कहते हैं ना कि औरत मर्द के बराबर है, लिहाजा औरत को बाहर निकालो, औरत पे माशी जिम्मेदारियां डालो, उसको दुनिया की दौड़ धूप में आगे रखो, वो शाने से शाना मिलाकर चले, कदम से कदम चलाकर में चले, तो आपने औरत को तो मर्द के बराबर कर दिया, तो क्या आप मर्द को भी औरत के बराबर कर सकते हैं? औरत तो हर मैदान में पहुंच जाएगी मर्द के साथ, क्या मर्द भी बच्चे पैदा करने में औरत का साथ देंगे? क्या 2 साल दूध पिलाने में कोई मर्द बीवी की मदद कोई कर सकता है? बहुत ही नामुमकिन बात है। मुझे तो ये मिसाल ऐसी लगती है कि कोई के कुर्सी और मेज़ को बराबर कर दो। जो टेबल्स आपके सामने रखे हैं वो आपकी चेयर से ऊंचे हैं, अगर आपकी चेयर को भी इतना ही ऊंचा करें कि नहीं ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है कि कुर्सी एक तो झुकी हुई है और टेबल ऊपर खड़ा हुआ है, कुर्सी को भी बिल्कुल सीधा कर दो, बेंच बना दो, चलो निकल गई आपकी टेक पीछे, सीधा बेंच कर दिया। अब आप ज़रा बैठने की कोशिश करें कि टेबल भी बराबर पे, कुर्सी भी है, जब आप बैठेंगे तो आप कहाँ पहुँचे हुए होंगे? चल ही नहीं सकता। कभी कुर्सी ने तो ये नहीं कहा कि मैं नीची की हूँ, मैं झुकी हुई की हूँ, मैं बिछी हुई की हूँ और टेबल जो है वो खड़ा हुआ क्यों है? ज़मीन और आसमान को देख लीजिए, आसमान ऊंचा है, ज़मीन नीची है, ये हर वक्त कदमों में रौंदी जाती है, आसमान एक छत की तरह खड़ा है। कभी आपने ये झगड़ा नहीं सुना होगा क्योंकि अल्लाह ने उनको ताकत ही नहीं दी। सूरज चांद को देखें, मर्द क्या है? सूरज है। अल्लाह ताला ने उसको खूब रोब वाला रखा, घर में एक बंदे का रोब होना चाहिए जिसकी वजह से बाकी मामला दुरुस्त होते रहे। उसके मिजाज में एक रोब हो सकता है, उसके मिजाज में एक बड़ाई का अंदाज हो सकता है, बीवी आखिरी फैसला मर्द का हो सकता है घर में। इसका ये नहीं मतलब कि बीवी की कोई राय नहीं, बच्चों की कोई राय नहीं, जहाँ भी कोई मामला हो जाएगा ज़रा छोटा मोटा इधर उधर, आखिरी राय मर्द की होगी। इसके बरक्स आप बीवी को देखें तो वो चांद है, ठंडक है। औरत के मिजाज में अल्लाह सुबहाना ताला ने एक नरमी, एक ठंडक, एक मोहब्बत पैदा की है, क्योंकि बच्चे की तरबियत के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आप देखें कि एक घंटा तो शायद आम मर जाए, आम हर एक की बात नहीं कर रही, लेकिन आप सिर्फ आप एक घंटे के लिए रोता बच्चा बाप को दे दें तो आप देखेंगे कि शायद बच्चे से ज़्यादा बाप रो रहा होगा और वो तो चुप हो जाएगा। बाज़ दफ़ा बच्चा रोता है तो मर्दों को मुश्किल पड़ी होती है इसको चुप कराएं कि उनके शोर से ज़्यादा मसले पैदा होते हैं। आप ज़रा एक दिन घर छोड़ के आए मर्दों के ऊपर, आप जाके देखेंगे, और अगर आप उनको इजाज़त दे देना कि ज़रा किचन में काम कर लीजिएगा तो बाद में आप जाके कहेंगे कि प्लीज़ आप आराम किया करें, मैं खुद आके बना लूँ। कभी घर में मेहमान आ जाए तो आप देखें कि घर का किचन का जो हाल वो कर देंगे, वो बड़े खुश होंगे मैंने मेहमान नवाजी की, लेकिन आपको कहीं जूस के डिब्बे मिलेंगे, कहीं चाय मिलेगी, कहीं खाना मिलेगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने मर्द को कहा तुम बाहर ही रहो। मर्द घर में आते हैं तो बिगाड़ ही पैदा होता है, इल्ला माशाल्लाह कुछ बड़े सुघड़ होते हैं, लेकिन बात हमेशा फौकियत की है। आप आजमा के देख लें कि जब घरों में मर्द ज़्यादा देर रहते हैं, इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं, घरों में हर वक्त मुदाखलत करते हैं, तो शौहर बीवी के झगड़े ज़्यादा होते हैं। वजह क्या है कि मर्द का दायरेकार ही नहीं है घर में, वो घर में आता है तो उसको गुस्सा आता है क्योंकि वो बाहर का है, उसको खुली जगह चाहिए, उसको अपने बड़े बड़े फैसले करने हैं। आप देखिए कि जो औरतें शुरू में सालेहा बन के कानिता बन जाती हैं ना, आजजी भी आ जाती है, शौहरों की बात मानती हैं, और कानिता बनने के लिए कनात बहुत ज़रूरी है। जब बीवी में ये खूबियाँ आती है ना, कुछ अरसा सिर्फ वो शौहर की मानती है, उसके बाद सारी ज़िंदगी शौहर उसकी मानता है। मैं सोचती हूँ अगर ये की पॉइंट दूसरों को दे दिया जाए ना, तो हर बीवी अपने मर्द की बिला शिरकत गैरा अल्हम्दुलिल्लाह उससे बात मनवा सकती है। मनवाने का तरीका क्या है कि पहले मानो, झुको, थोड़े दिन तुम उसकी मान लो फिर वो मान लेगा, 1 साल शुरू का तुम उसकी पसंद के खा लो, जो कहता है खा लो, तुम भी वही खा लो, वो नमक खाता है तो तुम भी खाओ, मिर्च खाता है तो खा लो, वो जो मांगता है खा लो, तुम भी उसको साथ दो, तुम उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। आप देखिए कि कुछ अरसे के बाद वो खुद बहुत किसी न किसी तरीके से बीवी की खुशी का भी खाने लग जाएगा। ये ज़िंदगी का असूल है, पहले आप मानते हैं फिर मनवाते हैं। औरत सालेहा बने, मर्द कवाम बने, ज़िंदगी की गाड़ी बहुत खूबसूरत चलेगी। और कुछ बातें ऐसी होती हैं, आप देख लें कि पूरे के पूरे मैटर्स औरतों के हाथ में, इवन घर में क्या पकेगा आप बताइए, कितने मर्द है जो ये कह के जाते हैं आज बिल्कुल यही पकेगा और ख़बरदार कुछ और पकाया। एक औरत थी तो उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े मामलात हैं वो मेरे मियाँ डील करते हैं और छोटे छोटे मामले मैं डील करती हूँ। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि बड़े मामलात मेरे शौहर ये डील करते हैं कि मसलन दुनिया में जंग लगनी चाहिए कि नहीं, हाँ फलां मुल्क को एड्स मिलनी चाहिए कि नहीं, चांद पे शटल पहुंचनी चाहिए कि नहीं, ये वो करते हैं, बाकी सब छोटे छोटे मैं करती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप क्या छोटे छोटे करती हैं? तो उन्होंने कहा कि बच्चों की शादियाँ कहाँ करनी है, घर बनाना है कि नहीं बनाना, ये तो छोटे छोटे मामले, ये सारे मैं करती हूँ। और एक बहुत ही अच्छा मैंने वो एक देखा था, इमेज बना हुआ था, बशीर जुमा साहब है, उन्होंने हमारे पास आके ह्यूस्टन में लेक्चर भी दिया टाइम मैनेजमेंट पे, तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था, एक जैसे स्केच कह ले कि बाज़ औरतों का हाल क्या होता है, ये देखिए अगर आप मेरे हाथ में इस कप को देखें तो नीचे प्लेट रखी हुई थी इस तरीके से, मिसाल है कि ये प्लेट है, इसके ऊपर कप रखा हुआ है और दूसरे हाथ से कोई इसके अंदर उंडेल रहा है ना, यानी देखने में जाहिर ये लग रहा है कि वो ये चीज़ डाल रहा है लेकिन असल में कप के अंदर नीचे है कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि औरतें अपना कंट्रोल नहीं छोड़ती, यानी कुछ इस तरह की चीज़ थी, अगर कहीं हुई तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कुछ लोग पूरा होल्ड अपना रख रहे होते हैं लेकिन वो मर्द का बस एक ऊपर का नाम ही होता है। और आप प्रैक्टिकली देख लीजिए कि घरों में रिश्ते लेने देने, खाने पकाने, कपड़े, हर चीज़ में किसका हाथ है? औरत का हाथ है। यहाँ आप कैसे कह सकते हैं कि औरत को दबाया हुआ है? कितनी औरतों को दबाया हुआ देखते हैं आप, बताएं कि मर्द तो बेचारे ये भी औरतों से पूछते हैं क्या पहनूं, आप उनको सॉक्स ना दें वो बगैर सॉक्स के चले जाएंगे, उनको तो शायद इतना पता भी नहीं या उनको इतनी इजाज़त ही नहीं कि मैं अलमारी से सॉक्स भी ले सकता हूँ। खाते के आप कभी सोचे कि बहुत कम मर्द है जो फरमाइशें करके पकवाते होंगे, खाते होंगे, आप जो रख दें खा लेंगे, आप सारा दिन खूब चटपटे खाने पकाएं और उनके सामने आप जो मर्जी रोटी सालन रखते वो खा लेंगे। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ ये जो एक जुर्म समझा जाता है कि औरत को मारा जाता है, किसको मार पड़ती है? अब यहाँ इजाज़त दी थी लेकिन याद रखिए ये एक आखिरी और एक बड़ी ज़्यादा कंडीशनल इजाज़त है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वलई यदरिबा खियारुकुम, तुम्हारे जो अच्छे लोग हैं वो कभी नहीं मारेंगे। दूसरी बात, तो दूर को दूर करें, आप सिर्फ अपने एरिया में देखें, हर औरत उसकी खाला माँ फूफी चची बहनें हैं ना हम सब में से, कभी किसको मार पड़ी? 100 में से कोई एक या दो औरतों को मार पड़ती है और वो भी बेचारी देहातों में रहने वाली या मासियाँ या शराबी किसी का मियाँ है या कोई ड्रग्स का शिकार है, पैसे मांग रहा है, या इल्ला माशाल्लाह कोई खाता है मार? कभी भी नहीं खाता। लेकिन ये जो वेस्ट में एक हमने शोशा दे दिया लोगों को कि औरतों पे बड़ा जुल्म होता है और ज्यादतियाँ होती हैं और चंद ऐसी घिनौनी तस्वीरें बना के मीडिया में पेश करते हैं और फिर वही बातें सब बोलते हैं, आपने इस्लाम का कोई भी रंग देखना है ना तो वो देख लीजिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हक है, आपके शौहर डोमिनेंट है या आप डोमिनेंट है, आपकी मर्जी चलती है कि उनकी चलती है, रोब घर में किसका है, बस आप इसी से समझ जाएंगे। औरत को जो करना है वो ये है कि वो शौहर की खुशी का सामान बने, अगर थोड़ा सा बुनियाद में शुरू में एतमाद ले लेते हैं अल्लाह ताला की तौफीक से सारी ज़िंदगी का एतमाद बन जाता है। और फिर उसके बाद आप देखिए कि जिनको नहीं मानना वो ना माने। अब यहाँ तक आइडियल सिचुएशन के बाद आखिर में अल्लाह ताला ने इस आयत में जो ये बात कह दी थी कि औरत के मिजाज में नशूज हो सकता है, नशूज का लफ्ज़ नशा से होता है, उठान को कहते हैं, चढ़ाओ, यानी कुछ लोगों के मिजाज में चढ़ाई करना होता है, हर वक्त दूसरे के सर पे सवार रहना, इधर ना हो उधर ना हो, किधर गए थे, किससे पूछा था, क्या गए थे, किसको क्या दिया, मैंने ये कहा था वो कहा था, यहाँ तक भी बात बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन जब इस हद तक हो जाए कि मर्द जो है वो बीवी की नज़रों में हकीर होने लगे, नशूज का जो लफ्ज़ है ना, ख़ास तौर पे बीवी की तुंद मिजाजी यानी उसके मिजाज में सख्ती, टेढ़ा होना और शौहर से नफरत करते हुए उसकी बात मानने से इनकार करने को कहते हैं। और यहाँ ये जो लफ्ज़ है ना कि वल्लाती तखाफ होना, तुम खौफ रखते हो, मर्दों को कहा तुम खौफ रखते हो, तो खौफ से मुराद वहम नहीं है इधर, कैसी तुम्हें शक हो गया कि मेरी बीवी जो है वो सरकश है, बल्कि इससे मुराद है कि तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बीवी नाफरमान है, बात नहीं मानती, इज्जत नहीं करती, तो क्या करो, पकड़ के मारो? नहीं, प्यार से समझाओ, नरमी से बात करो, अभी उसको पता नहीं था, पता चल गया अब उसकी बात मान लो, फिर उसको समझा दो, नहीं समझती फिर दूसरे दर्जे पे एक बिस्तर अलग करो, ये नहीं कहा कि उसको घर से निकाल दो, उसकी माँ को फ़ोन कर दो ये क्या दी है इसको आके ले जाएं, हर वक्त उसके भाइयों के मुकदमे ही सामने खुलते रहें, खुद मामले को डील करो। शुरू में अब देखिए कि पहले घर में मामला सेट हो रहा है, बिस्तर से जब बीवी को अलग किया जाता है तो बीवी के लिए ये एक बहुत बड़ी चपत होती है, वैसे बीवी जितना मर्जी नखरा करे, लेकिन जब कोई मर्द कह देता ना कि मुझे तुमसे कोई ख्वाहिश नहीं है, तो बीवी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा किलिंग होती है। अल्लाह ने उसी तबीयत को सामने रखते हुए कहा कि फिर तुम ज़रा इनको अलग करो, प्यार की बातें करते थे, मोहब्बत की बातें करते थे, वो ना करो, ज़रा इसको एहसास हो कि तुमको इतनी नहीं हो कि तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, जब ऐसा हो जाए ठीक हो जाएंगी तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये मामला चलते हैं, हाँ नहीं होगा तो वद्रिबू होना, शऊर को बेदार करने के लिए। जैसे बाज़ दफ़ा आप देखिए कि झटके लगाते हैं ना बिजली के, बाज़ ऑर्गन्स जो होते हैं वो काम करना जब छोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक्स के ज़रिए से इलाज किया जाता है। ये असल में जो वद्रिबू हुन्ना था, ये एक इलेक्ट्रिक शॉक ही था कि बीवी को हल्का सा लगाओ, इस तरह का लगाओ कि जैसे मिसवाक से या किसी और हल्की हुल्की चीज़ से मारा जाता है, तो फिर अगर वो मान जाती है तो ठीक है। अब आप देखिए कि जिस औरत के अंदर ज़रा सी भी समझ होगी वो इसके बाद फ़ौरन संभल जाएगी, उसको लगेगा कि अब हाथ उठ गया तो बस बात ख़त्म। और आप देखें कि बाज़ दफ़ा यहाँ एक और भी शक पैदा किया जाता है कि अच्छा मर्द तो मार सकता है तो क्या बीवी भी मार सकती है, ये सवाल उठता है दिलों में, और क्यों नहीं मार सकती, यही तो हम कहते हैं कि जुल्म है। तो इसके बारे में इस आयत की शान नज़ुल में एक वाक्या आता है कि जैद बिन अबी जुहैर ने अपनी बेटी हबीबा का निकाह साद बिन रबी से किया, उनके आपस में कुछ इख्तलाफ हो गए, शौहर ने बीवी को थप्पड़ मार दिया, हबीबा ने अपने वालिद से इसकी शिकायत की, बाप जो थे वो लेके इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए, तो आपने हुक्म दिया कि हबीबा को हक है कि वो भी जिस तरह साथ ने उनको तमाचा मारा ये भी मार लें, क्योंकि आप तो कसास की बात कर रहे थे, बराबरी की बात कर रहे थे, अब वो भी कर सकते हैं। ये दोनों ये फैसला सुन के अभी बाहर ही निकले थे कि ये इंतकाम ले लें, लेकिन उसी वक्त फिर ये आयत नाजिल हो गई कि जिसमें कहा कि मर्द मार सकता है लेकिन औरत नहीं मारेगी, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने दोनों को बुलाकर ये आयत सुनाई और फिर जो इंतकाम लेने का आपने हुक्म दे दिया तो उसको मनसूख कर दिया। अब क्यों? अब देखिए कि औरत को ना मारने की इजाज़त दे के अल्लाह ने औरत को मज़ीद मार खाने से बचा लिया। आप लम्हे के लिए सोचें ज़रा कि औरत का जब हाथ उठेगा तो फिर मर्द तो उसकी हड्डी पसली तोड़ेगा ना, जिस्मानी तौर पे मर्द मजबूत है, हाथ भी उसका हैवी हो सकता है, उसके अंदर ताकत भी ज़्यादा है, गुस्सा भी ज़्यादा है, अगर उसने हाथ मारा और बीवी खामोशी से उसको सह के पीछे हो गई, फिर उसका फैसला है कि वो आगे क्या करे, लेकिन वो बची रहेगी। लेकिन जिस औरत ने आगे बढ़कर अगर बात को बढ़ा दिया तो फिर बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस सारी बात के अंदर हमेशा हकीकत हाल को सामने रखना चाहिए, ज़िंदगी के अंदर हर बात ज़बरदस्ती से नहीं चलती, प्यार और मोहब्बत से जो बातें हो जाती हैं वो दूसरे तरह से नहीं होती, यहाँ तक मामला ना हो फिर उसके बाद घर से बाहर बात जाएगी, फिर एक हकम औरत की तरफ से आएगा, एक मर्द की तरफ से आएगा, और ये कौन होंगे जिनके अपने को ज़ाती मुफाद ना हो, मतलब ये पहले ही सोचे मैं कि अच्छा तलाक ले ताकि इस लड़की को अब अपने घर ले जाए, ऐसा ना हो, और इसी तरह जो मर्द का हकम होगा वो भी इस सूरत में ना हो कि नहीं जो मर्जी हो हमने इसी को लेके आना है और कोई ज़बरदस्ती करे ना करे हमें इसी को रखना है, ऐसा नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल बैलेंस्ड किस्म के दो लोग बैठे, ठंडे दिमाग वाले, और कोशिश करनी चाहिए कि ये लड़की और लड़के के माँ बाप में से ना हो, क्यों? फितरी तौर पे हमदर्दियाँ हो जाती हैं एक के साथ, अपनी राय भी शामिल होती है इसमें, कोई साहिब राय शख्स हो सकता है, सोसाइटी का कोई मोतबर शख्स हो सकता है, किसी मस्जिद का कोई इमाम साहब हो सकते हैं, कोई आलम दीन हो सकते हैं, जिस एक वो जिस पे औरत ट्रस्ट करे और एक वो जिस पे मर्द ट्रस्ट करे, कोई है कि वो दोनों अपना अपना वकील भेजते हैं, अब ये दोनों बैठेंगे बात करेंगे क्या बेहतर है, और दोनों का इरादा हो इस्लाह का या मियाँ बीवी का इरादा हो, ये इसमें दोनों बातें आती हैं, यानी हकम को भी इख्तियार तो दिया है लेकिन वो ज़बरदस्ती ये काम नहीं कर सकते कि उनको पकड़ के मारें और उसके ऊपर ज्यादती करें। इसलिए एक मौके पे हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो के दौर में एक मर्द और औरत आए और दोनों के साथ कुछ लोग भी थे जो उनके आपस के इख्तलाफ को संवार रहे थे, तो उस वक्त हज़रत अली ने हकम जो थे उनको कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तुम्हें पता है तुमने क्या करना है, यानी उनको शऊर दिला रहे थे कि ऐसा ना हो कि तुम बस आके करो, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ देखी गई वो क्या है कि बाज़ दफ़ा लड़की लड़का खुद तो समझौता कर ले, जहाँ तीसरा पड़ता है वहाँ बात बिगड़ जाती है, ये जो हकम हमारे खानदानों और घरानों में होते हैं उसकी वजह से अक्सर घर टूट जाते हैं। आप कहीं भी जाके फैमिली सिस्टम में देख लें, जब तक बात घर के अंदर रहती है मियाँ बीवी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जहाँ लड़की का बाप आ गया उसने पकड़ के लड़की को अपने घर ले गया, चलो मेरी बेटी ऐसे ही थोड़ी फेंकी हुई है, या लड़के की माँ ने ज़बरदस्ती कर करा के तो लड़की को घर भेज दिया, जहाँ मामला बड़ों के साथ आ जाते हैं ना तो वहाँ बात नहीं बनती, इसलिए जिसको भी हकम बनाए उसको बहुत अच्छी तरह बनाए। और लड़की और लड़का जब शादीशुदा हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ से तोड़ने के बाद अगर कहीं और आएगा तो क्या वहाँ आइडियल सिचुएशन होगी, क्या वहाँ कोई जन्नत के लोग उतरेंगे, कोई किसी और प्लेनेट से उतरेंगे। हैं तो इसी दुनिया के इंसान हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ बाद में भी करना है तो पहले ही कर लो, और यही असल में ज़िंदगी का हुसन है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हमें एक बड़ी खूबसूरत बात बता दी, और वो क्या कि अल्लाह ताला को तुम्हारे सारे मामलात की खबर है। अगर इस मामले में कोई ज़्यादती करेगा किसी के ऊपर तो याद रखे कि इस दुनिया से गुजर कर एक अगली दुनिया में जाना है। और इस सूरत में भी आप देखिए कि जब हम कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेते हैं तो फिर हकीकत में सारे मामला जो है वो दुरुस्त होते हैं। बाकी रह गई बात इसके बाद नहीं बनी तो फिर उसके बाद ये भी कोई बात जो है वो गले का एक फंदा नहीं बना लेनी चाहिए कि साथ रह भी रहे और है नहीं। इस्लाम ऐसी शादी को नहीं मानता, ये जुल्म की एक हद हो सकती है। ऐसी शादी या तो मर्द को बुराई की तरफ ले जाएगी या औरत को बुराई की तरफ ले जाएगी। हमारे यहाँ ये भी एक जुल्म और ज्यादती जो है वो हकम्स की तरफ से होती है घर वालों, और वो कह के नहीं कुछ भी है बस नाम है, हम तलाक नहीं ले सकते, हम तलाक नहीं देना चाहते क्योंकि हम बड़े इज्जत वाले लोग हैं, या हमारे खानदानों में किसी की तलाक नहीं, और वो गुनाह पे मजबूर कर देंगे लोगों को लेकिन उनको तलाक नहीं देने दिलाने देंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ बता दी, यहाँ तक तो यहाँ सिर्फ इतनी बात हुई है कि अगर इरादा इस्लाह का करेंगे तो युवफ़िकिल्लाहु बैनहुमा, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह सूरत निसा में एक आयत आएगी कि जिसमें खुलासा ये कि अच्छा अगर नहीं फिर बनती ना तो फिर जुदाई करा दो, उसके बाद अल्लाह ताला दोनों को अपनी वुसअत से दे देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जिस तरह नमाज रोज़े में अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल की कोशिश करते हैं, इसी तरह निजी मामलात में भी हम अल्लाह ताला की इस रहनुमाई से फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे सबक पूरा हुआ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।